धवला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम् जय उजर्सेननाहो जैन महाकम्मपयडिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणुद्धरियो समप्पियो फुह्वयन्तस्स। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें अपना द्वितीय खंड खुद्दा बंध नाम का चल रहा है और सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 57 पर हम आ गए। 57 यहाँ उदय स्थानों की चर्चा चल रही थी अपनी, और मनुष्य गति में हम उदय स्थान देख रहे थे। उसमें सामान्य मनुष्यों के हमने देखे थे विग्रह गति में 21 होते हैं, और वहाँ भव धारण करने के लिए शरीर धारण के पहले समय में 26 का होता है उदय, उसके बाद 28 हो जाते हैं प्रघात और विहाय गति मिलाने से 28 होते हैं, फिर उच्छ्वास मिलाने से 29 और स्वर मिलाने से 30। ये तो सामान्य मनुष्यों के स्थान है। आहारक संबंधी जो इसको विशेष मनुष्य कह दिया है, उसके तो विग्रह गति तो होती नहीं है, क्योंकि मुनिराज है वो आहारक शरीर जब बनाना वो चालू हो जाता है तो उसमें पहले में पहले वो मिश्र शरीर काल, तो उसमें 25 का होता है, क्योंकि आहारक शरीर में सहनन नहीं पाया जाता, तो सहनन बिना वहाँ 25 होते हैं। और वहाँ सारी प्रशस्त ही प्रकृतियाँ है, इसमें भंग नहीं होगी कोई। 25 के बाद 27 होते हैं, उसमें प्रघात और प्रशस्त विहाय गति आ जाने से, फिर उच्छ्वास आ जाने से 28 और 29 बराबर, उच्छ्वास से 28 और भाषा पर्याप्ति काल में 29 हो जाते हैं। 20 का स्थान अभी नहीं, वो केवली की बात है। हाँ, अभी हमने आहारक की बात देखी, अब केवली भगवान के सामान्य केवली के समुद्घात प्रतर लोकपुरण और प्रतर में 20 प्रकृतियों का उदय है। वहाँ पर विग्रह गति में आनुपूर्वी होते, वहाँ कोई सवाल नहीं आनुपूर्वी का, इसलिए वो तो 12 ध्रुवोदयी और बाकी जो गति जाति वगैरह उस संबंधी, तो उसका उदय है, तो वहाँ 20 प्रकृतियों का उदय है। फिर प्रतर के बाद पुरातर लोकपुरण प्रतर, फिर कपाट में आ गए, तो वहाँ क्या औदारिक मिश्र है, तो वहाँ कितने का होगा, 20 से 26 होगा ना। हाँ, जैसे यहाँ भव धारण करने के पहले समय में होती है वैसे वहाँ पर होगी, 26 से हो जाएगी फिर 26 से 28 28 से 29 और 30 तीर्थंकर प्रकृति वाले हो गए, यानी तीर्थंकर नाम कर्म, यानी तीर्थंकर जीव, क्योंकि वो ऑलरेडी तीर्थंकर है ना, संयोग केवली है, जब समुदात करते हैं तो उनका 21 वाला पहला, 21 में 6 मिला तो 27 वाला, फिर 27 के बाद 29 हो जाएगी प्रघात विहाय गति मिलाने से, फिर 30 और 31 होते हैं। ये हमने अलग अलग देखे थे मनुष्यों में। अब यहाँ 57 पेज पर अयोग्य भगवान के भी उदय स्थान उन्होंने बताए थे कि नाम कर्म की तो 9 प्रकृतियां, तीर्थंकर सहित 9 प्रकृतियों का उदय है, और जो तीर्थंकर नहीं है उनके 8 प्रकृतियों का उदय है। उसमें वो मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, तरस बादर पर्याप्त, शुभ का आदय, यशस कीर्ति, ये 9 सॉरी ये 8 और तीर्थंकर मिलाने से 9 हो जाते हैं। अब लास्ट लाइन पढ़ेंगे हम 57 पृष्ठ पर, मनुष्यों के उदय स्थानों संबंधी समस्त भंगों का योग, यानी सभी सामान्य के, वो आहारक के, केवली के, सब मिलकर। और पहले हमने भंग देखे थे ना, सुभग या दुर्भग, आदे अनादे, वो सब मिलाकर 32 कम 2700 अर्थात 2668 होता है, 2668। अभी हम आए 58 पृष्ठ पर, ये सारे भंग उन्होंने गिनाए हैं। देखो ये पहली जो लाइन है उसमें स्थान क्रमांक लिया, पहला स्थान, दूसरा स्थान, इस तरह से। और वहां कितने प्रकृतियों वाला स्थान है उसको बताए, 20 प्रकृतिक स्थान है, वो 20 वाला वो केवली को होता है, सामान्य केवली को समुद्घात में। 21 वाले प्रकृतियों के उदय स्थान में सामान्य जो मनुष्यों के 9 भंग है, क्योंकि उसमें अपर्याप्त का 1 भंग होता है, पर्याप्त के 8 होते हैं, सुभग दुर्भग आदे अनादे यश यश के कारण 2 गुना 2 गुना 2 शरीर धारण करने के समय की बात है। और अपर्याप्त का 1 जो सारी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, मिलकर 9 भंग वहां होते हैं। आहारक वाले को 21 वाला स्थान नहीं है, परंतु 21 वाला स्थान तीर्थंकर केवली को होता है, उसका 1 ही भंग है। देखो ऊपर जो 1 लिखा था 20 वाला, वो सामान्य केवली का था, और फिर जो 21 वाला 1 बताया वो तीर्थंकर केवली का, वो अलग अलग है। प्रकृतियां जुदी जुदी है सब। अब 25 वाला स्थान किसका होता है, एकमात्र वो आहारक वालों के होता है, और उनका 1 ही भंग है क्योंकि सारे प्रशस्त प्रकृतियां हैं। 26 वाला स्थान शरीर धारण करने के पहले समय में होता है, तो वहां सुभग दुर्भग आदे अनादे यश अयश, और फिर 6 संस्थान 6 सहनन इत्यादि से 288 भंग हो जाते हैं पर्याप्तों के, और अपर्याप्तों का 1, इस तरह से 289 भंग हो जाते हैं। अब 26 वाला वो स्थान विशेष विशेष वालों, इन्हें सामान्य केवली के समुद्घात में होता है, जब लौटकर फिर आहारक मिश्र में आते तब। 27 प्रकृतिक वाला स्थान आहारक शरीर वालों को शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होगा, और 27 वाला स्थान तीर्थंकर केवली को ये कपाट समुद्घात में हो जाएगा। 28 प्रकृतिक स्थान, देखो 288 वाला 576 पर पहुंचता है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर पर्याप्त ही जीवों को लेना है, तो सुभग दुर्भग आदे अनादे यश यश, फिर 6 संस्थान 6 सहनन और 2 विहाय गति भी आ मिलती है, इसलिए 288 गुना 2 576 यहाँ भंग हो जाते हैं। 28 का स्थान आहारक वालों को कब होता है, उच्छ्वास पर्याप्ति होने पर होता है, और यहाँ 28 वाला स्थान सामान्य केवली को दंड समुद्घात में हो जाता है, क्योंकि ऊपर तो औदारिक मिश्र वाली बात होती है, यहाँ औदारिक का योग भी चालू हो जाता है, तो सामान्य केवली के वहां 12 भंग बताए। 12 भंग कैसे हुए अश्विन भाई, सामान्य केवली के 12 भंग कैसे हो गए वहां पर? हाँ, 6 संस्थान और 2 विहाय गति, ऊपर 6 बताए थे ना, वहां 6 संस्थान थे, संस्थान के कारण 6 भंग हुए थे सामान्य केवली में, और यहाँ 12 हो गए, वो संस्थान प्लस विहाय गति। अच्छा फिर से दोबारा देखो, ये पूरे सब मनुष्यों के टोटल भंग यहाँ बताए हैं। 20 प्रकृतियों वाला उदय स्थान ना सामान्य मनुष्यों के होता है, केवली भगवान के केवल चाहिए आपको, तो पहला वाला 20 वाला केवली को है, सामान्य केवली को, और समुद्घात में होता है, वहां 1 ही भंग है क्योंकि वहां ऑप्शनल कोई है नहीं, त्रस बादर पर्याप्त वगैरह तो हमेशा मालूम है, मनुष्य गति वगैरह। 21 वाला भंग यानी सामान्य मनुष्यों को विग्रह गति के बाद बहु धारण करने के पहले समय में, विग्रह गति में तो 21 वाला स्थान हो गया। अच्छा सर 21 वाला ही बता रहे, सॉरी विग्रह गति में है। विग्रह गति में 9 कैसे हो गए? अपर्याप्तों का एक भंग और पर्याप्तों के सुभग दुर्भग आदे अनादे यश अयश, इसलिए उसके 8 और 1 9 हो गए। और 21 वाला एक है वो तीर्थंकर केवली के समुद्घात में होता है, यानी ऊपर 20 में एक तीर्थंकर प्रकृति मिलाने से 21 हो जाते हैं। अब 25 वाला स्थान केवल आहारक शरीर वालों को शरीर ग्रहण करने का पहला समय में होगा और उनके सारे प्रशस्त प्रकृतियां होती, इसलिए एक ही भंग बताया। 26 प्रकृतियों का स्थान सामान्य मनुष्यों को ये शरीर धारण करने के पहले समय में है, यानी पर्याप्तों के 288 भंग और अपर्याप्तों का एक भंग। पर्याप्तों के कैसे? सुभग दुर्भग आदे अनादे, मिश्र काल, उसको मिश्र काल कहते हैं, शरीर धारण करने का पहला समय। वो अंतर्मूर्त तक रहेगा जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, वहां से लेकर शरीर धारण करने के पहले समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक उसको मिश्र शरीर काल कहते हैं। इन्हें पर्याप्तों के 288 भंग और अपर्याप्तों का एक भंग, उसमें 6 संस्थान 6 सनन और वो बाकी 3 आ गए। यही स्थान सामान्य केवली को कपाट समुद्घात में होता है, क्योंकि वहां 6 संस्थानों के भंग से 6 भंग हो जाते, 6 संस्थानों के भेद से। अब 27 वाला स्थान सामान्य को नहीं है परंतु आहारक वालों को है, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर। ऊपर 25 से वो 27 हो गए क्योंकि परघात और प्रशस्त विहायगति आ मिली। वही 27 का स्थान जहां सामान्य केवली को 26 का था, यहां तीर्थंकर केवली को 1 है। उनके समचतुर संस्थान एक ही संस्थान होने से एक ही भंग बताया, उनके 6 भंग नहीं बताए। अब 28 वाला स्थान सामान्य मनुष्य शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर यह शुरू हो जाता है, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक की बात है। पहले 288 भंग थे, उसमें 2 विहाय गति आ मिली, इसलिए 576 हो गए। ये पर्याप्तों की होगा, अपर्याप्तों यहां तक नहीं पहुंचेंगे। आहार वालों के जो शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर 25 से 27 हुआ था, वो 27 से 28 हो जाता है उच्छ्वास होने पर। वही वहां पर 28 वाला स्थान सामान्य केवली का जो 26 वाला था कहां पर था? कपाट में था। वो अभी दंड में, वो 6 संस्थान और 2 विहाय गति, यानी जैसे शरीर पर्याप्ति यहां उनकी पूरी हो गई, क्योंकि केवली के भी फिर ये पर्याप्ति पूरी करनी पड़ती है। यानी वो 6 वाला था ना, वो तो मिश्र काल था उनका, तीर्थंकरों का एक था वहां पर 27 वाला। 28 में सामान्य केवली के 12 भंग हुए संस्थान के और विहाय गति के कारण। अब 29 वाला स्थान सामान्य मनुष्य शरीर पर्याप्ति होने पर 576 वाले भंग थे, वे ही प्रकृतियां हैं, यानी आगे उच्छ्वास आ मिला, प्रकृति बढ़ गई, भंग उतने ही रहे। देखो 27 में सामान्य केवली तीर्थंकर केवली था, 28 में सामान्य केवली के 12 भंग थे, 29वे में सामान्य केवली का 12 हो गया और तीर्थंकर का 1 होगा भंग। देखो कैसे होता है। देखो जहां 26 का है सामान्य केवली का, वहां 27 है तीर्थंकर का। अब जहां 26 के बाद 28 को पहुंचता है सामान्य केवली, वो 27 वाला 29 को पहुंचेगा, वहां सामान्य केवली नहीं लिया, तो 29 में 1 भंग तीर्थंकर का लिया और 29 वाला 12 है वो सामान्य केवली के है, परंतु तीर्थंकर का वो 27 वाला 29 हुआ है और सामान्य का 28 में 29 हुआ है। यानी वहाँ तीर्थंकर का तो शरीर पर्याप्ति है और सामान्य की उच्छ्वास पर्याप्ति है। ख्याल में आई ना बात? आहार का एक है ना वहाँ पर, क्योंकि 25 से 27, 27 से 28, 28 से 29 तक पहुँचा। यह आहार का तो भाषा पर्याप्ति का काल है, यानी सुस्वर का उदय वहाँ होता है। अब देखो 30 वाला, 30 वाला सामान्य मनुष्यों को, अभी उसके तो भाषा पर्याप्ति यहाँ पूरी होती है। तो 574 में सुस्वर दुस्वर के दो भंग मिलाने से, यानी उसको दो गुना करने से 1152 हो जाते हैं। आहार की तो भाषा पर्याप्ति 29 पर ही पूरी हुई थी, उसके आगे के स्थान नहीं है। अब केवलियों की बात है, देखो सामान्य केवली 20 के बाद 26 में आया था, 26 के बाद 28 में आया था, 28 के बाद 29 में था और 29 के बाद अभी 30 में पहुंचेंगे। यानी सामान्य केवली का वो भाषा पर्याप्ति का काल है। हम्म, 24 हो गए ना उनके भाषा पर्याप्ति, हुए स्वर, दो स्वर आ गए। देखो पहले 6 थे तब संस्थान नहीं, खाली सुस्वर तीर्थंकर में लेना, सामान्य केवली में 6 संस्थान, वो 6 भंग हमने 26 के स्थान पे देखे। फिर 12 भंग के लिए 28 में वहां दो विहाय गति आ गए थे, 6 × 12 हुए थे। उच्छ्वास में कुछ बढ़ा नहीं, 12 के 12 ही भंग रहे। और भाषा पर्याप्ति में सुस्वर दुस्वर के दो गुना और किया तो 12 × 24 यहां पर हो गया। देखो जहां 24 सामान्य केवली के है, वहां तीर्थंकर का जो एक है वो उच्छ्वास पर्याप्ति वाला है। आगे के स्थान में तीर्थंकर का एक लिया है वो भाषा पर्याप्ति वाला ले। इकतीस में तीर्थंकर की अपेक्षा भाषा पर्याप्ति काल है उनका। यानी 13वें गुणस्थान में लेना पूरा उनको, 13वें गुणस्थान में भाषा पर्याप्ति काल के तीर्थंकर के। 30 में 24 के लिए लिया था, सामान्य केवली के लिए दो ऑप्शन थे। तीर्थंकर का 30 वाला कौन सा है? वो उच्छ्वास वाला है। तीर्थंकर में, सॉरी 30 में जो एक बताया है वो तीर्थंकर का उच्छ्वास पर्याप्ति वाला है और 24 है वो सामान्य का भाषा पर्याप्ति वाला है। इकतीसवां एक जो लिखा है वो तीर्थंकर का है, भाषा पर्याप्ति काल वाला है सुस्वर सहित। अब नीचे 9 प्रकृतियों वाला स्थान है वो अयोग केवली के है। अब अयोगी के 9 प्रकृति ने तीर्थंकर प्रकृति एक एक बढ़ाने से 9 हो जाते हैं और सामान्य केवली के एक 8 वाला हो जाता है। वहां कोई ऑप्शनल प्रकृतियां नहीं है। यहाँ उदय रूप कौन कौन सी है? नाम कर्म की मनुष्य गति है, पंचेंद्रिय जाति है, त्रस बादर पर्याप्त है, सुभग आदेय यशस कीर्ति, ये तो 8 सामान्य केवली के और तीर्थंकर तीर्थंकर केवली के। इसमें ऑप्शनल नहीं, इसलिए भंग दोनों का एक एक ही होगा। यहां तक समझ में? टोटल सारे भंग। अब इसकी टोटल उन्होंने अलग अलग की, सामान्य में 2602 भंग हो गए टोटल, आहारक वालों के 4 भंग हुए क्योंकि 4 ही काल है उनके, उनके विग्रह गति का काल नहीं है। तो मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल, उनका एक एक ही भंग है प्रशस्त प्रकृतियों वाला, इसलिए उसके 4 ही भंग लिए। केवली भगवान के 5 काल होते हैं, कारमान शरीर काल है, फिर मिश्र शरीर काल है, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल, और उनके जो सब भंगों का जोड़ है 62 हो जाता है, इसलिए टोटल हो जाता है 2668 उसमें बोलो।
आरक का एक एक बंगलिया है और तीर्थंकर सहित केवली का एक एक बंगलिया है, वो कॉमन नहीं हो जाएंगे पुनरुक्त?
क्या प्रकृतियां सेम है कॉमन होने के लिए?
नहीं सॉरी।
हाँ, यहाँ भंग एक अपना अपना है उनका, समझ में आई बात? कोई बात नहीं, प्रकृतियां सेम होगी तो ही भंग। हाँ, क्योंकि यहाँ देखो 29 के स्थान में जुदे जुदे भंग बताए, 576, 1, 1 और 12, परंतु सारे के अपनी अपनी प्रकृतियां जुदी जुदी थी, स्थान इतने प्रकृतियों वाला, बस इतना ही कॉमन है उसमें। वो कौन सी प्रकृतियां, वो जुदी जुदी है। आरक को भूल गए, अभी देवगति की बात करेंगे। अब देवगति में भी ऐसे प्रशस्त प्रकृतियों के एक एक भंग लेंगे, वहां पर उनके 5 काल है तो 5 भंग बताएंगे। जैसे हम नारकियों में सारे अप्रशस्त लिए थे, यहाँ उनकी अपनी अपनी प्रशस्त होगी। देखो यहाँ पढ़ेंगे अभी हम देवगति में 21, 25, 27, 28 और 29 प्रकृतिक 5 उदय स्थान होते हैं। उनमें 21 प्रकृतिक उदय स्थान इस प्रकार है। देवगति पंचेंद्रिय जाति, तेजस और कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, देवगति प्रायज्ञान पूर्वी, अग्रु लघु, त्रस बादर पर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग आदेय, यशस कीर्ति और निर्माण। इन 21 प्रकृतियों का एक उदय स्थान होता है, भंग एक है। ब्रह्मा आपके सामने सारी प्रकृतियां लिखी है, उसमें से ध्रुवोदयी आपको बताना है। ध्रुवोदयी 12 होती है, मैं आपको संख्या भी बता देती हूँ, बताओ। वो ध्रुवोदयी नहीं है, गति कौन सी भी हो सकती है। ध्रुवोदयी का अर्थ है अनादि से उनका उदय पाया जाएगा, चारों गति वालों को। हाँ, तेजस कर्मण शरीर 2 हो गए, वर्ण गंध रस स्पर्श बराबर 2, 4, 6 हो गए, अग्रु लघु हाँ 7, हाँ स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ बराबर, निर्माण रह गया, ये 12 हो गए टोटल, ख्याल में है ना। और बाकी कैसे ऑप्शनल है, अभी देवगति के बारे में देवगति कहेंगे, जाति में से पंचेंद्रिय जाति कहेंगे, यानी किसी न किसी गति जाति का उदय ये नियम से है, पर वो कौन सी है उसमें ऑप्शन है। तो गति जाति, फिर त्रस बादर पर्याप्त, इसकी या इसके ऑप्शनल यहाँ पर लेना है। कोई स्थावर भी हो गए ना, एक इंद्रियों को स्थावर वाला है तो त्रस बादर पर्याप्त, यानी ये विग्रह गति से भी इसका उदय चालू हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। और फिर वो आदेय, शुभ का आदेय और यश कीर्ति, ये देव है इसलिए तीनों ही शुभ लिए। हमने एक इंद्रिय आदि में देखे थे, अपर्याप्तों में देखे थे, तो सारे अशुभ लिए थे। मनुष्यों में वगैरह तिर्यंच पंचेंद्रियों में ऑप्शनल लिए थे, इसने ऑप्शनल 9 लेनी। कौन सी? एक गति जाति, फिर हाँ वो त्रस बादर पर्याप्त वाली, और फिर सुबह का आदेय और यश कीर्ति में, और वो गति के साथ उसके अनुपूर्वी आ ही जाती, वो मात्र विग्रह गति में ही उदय रूप है। अब आगे बढ़ते हैं। शरीर के ग्रहण करने पर, जिसको हम मिश्र शरीर काल कहेंगे, देव गति में अनुपूर्वी को निकालकर, अभी और कौन कौन सी मिला देना, यहाँ तो सहनन बिना 5 मिला देना। मनुष्य और तिर्यंचों में हमने सहनन को डाला था तो 6 मिलाए थे तो 26 हुए थे, यहाँ सहनन बिना 5 मिलाए तो 25 हो जाएगी। वैक्रिक शरीर, समचतुरस संस्थान, वैक्रिक शरीर अंगोपांग, उपघात और प्रत्येक शरीर, इन 5 प्रकृति के मिला देने पर 25 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। भंग एक ही है क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शनल नहीं है। नारकियों में हमने दुर्भग अनादेय और यशस कीर्ति देखा था थ्रू आउट। शरीर पर्याप्ति से देखो, हमने देखा था बंध में तो ये ऑप्शनल होता है, यश कीर्ति भी बांधेगे और यश कीर्ति भी बांधेगे उसमें, तो सिर बांधेगा या अस्थिर बांधेगा, उसमें ऑप्शन होता है। परंतु यहाँ उदय में कोई ऑप्शन नहीं, अभी इनके उदय में ऑप्शन नहीं, देवों में और नारकियों में। उनके प्रशस्त प्रकृतियों का, उनके अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय थ्रू आउट चलेगा। और बंध में तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में प्रशस्त प्रशस्त बंधेगी, ख्याल में ना, थोड़ा बंध का और उदय का अलग हिसाब है सारा। अरे बंध में तो देखो मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि है, बंधने में तो चारों गति अलट पलट कर बंध रही है, पांचों जाति अलट पलट कर बंध रही है, सभी शरीर सभी अंगोपांग सब अलट पलट कर बंध रहे हैं उनके। देवगति के भी उनके जो यथा योग्य है उनके एकेंद्रीय जाति या पंचेंद्रीय जाति बंधेगी, मनुष्य गति या चरिंश गति बंधेगी, जो वो बांध सकते उसमें भी प्रशस्त अप्रशस्तों का उलट पुलट कर बंध है। सनत कुमार वगैरह पंचेंद्रीय जाति ही बांधेंगे, परंतु मनुष्य गति या तीरंज गति का ऑप्शन है। ग्रहवेग में मिथ्या दृष्टि को एक मनुष्य गति का ही ऑप्शन है, दूसरा नहीं है। तो जहां जो बंधने योग्य प्रकृतियां है उसमें उनका ऑप्शनल होता है, वो भले मनुष्य गति बांध रहे परंतु निज गोत्र या उच्च गोत्र उसमें भी बांध देंगे वो, वहां के शुक्ल लेशा वाले देव भी, तो उनके भी संकलेश विशुद्धि होती है, तो उनके भी अलग अलग मिथ्या दृष्टि के लिए ऑप्शन बता रहे। समय दर्शन होने पर हमने देखा था कि जो जो बंध विच्युति हो गई है उसके बाद वाली प्रकृतियां वो बांधेंगे, ये बंध के हिसाब। और यहाँ हम उदय का हिसाब देख रहे हैं। देखो फिर से पढ़ते हैं इसको। तो हमने ये शरीर ग्रहण करने पर ये पांच प्रकृतियां देखी, भंग एक ही होता है, ये 25 प्रकृति वाला हो जाएगा। उसके बाद 25 में कितने मिलेंगे, अभी परघात और विहायगति, वो प्रशस्त विहायगति ही लेंगे। देखो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए देव के पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों में परघात और प्रशस्त विहायगति, इन दो प्रकृतियों के मिला देने पर 27 प्रकृति को उदय स्थान होता है, भंग एक है। आन पान पर्याप्ति यानी उच्छ्वास पर्याप्ति से पर्याप्त हुए देव के पूर्वोक्त 27 प्रकृतियों में उच्छ्वास प्रकृति और प्रविष्ट हो जाती, प्रविष्ट नहीं एंटर होती है, यानी उसका भी उदय शुरू हो जाता है। उस समय 28 प्रकृति उदय स्थान होता है, भंग एक है। आगे भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए, पर्याप्त शब्द है क्या उसमें, नहीं तो डालो। भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए देव के पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में सुस्वर के प्रविष्ट हो जाने पर, क्योंकि उनके दुस्वर का उदय नहीं हो पाया जाता, सुस्वर का ही होता है, 29 प्रकृतिक उदय स्थान होता है, प्रकृतिक यानी प्रकृति वाला, भंग एक है। इनके विग्रह गति में, मिश्र शरीर में, शरीर पर्याप्ति में, उच्छ्वास पर्याप्ति में, भाषा पर्याप्ति में एक एक ही भंग दे, तो पांच काल है, तो पांच भंग हो गए टोटल। शंकाकार पूछते हैं, इन 29 प्रकृतियों वाले उदय स्थान का काल कितना है? तो बिना देखे आप बता सकते कितना होगा उदय काल? अभी अवशेष आयु प्रमाण होगा, अवशेष आयु, अंतर्मूर्त तो चला गया भाषा पर्याप्ति के लिए, तो छोटी आयु कितनी हो सकती है देव की और बड़ी आयु कितनी हो सकती है? कम से कम 10,000, तो अंतर्मूर्त कम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम अंतर्मूर्त कम 33,000। ख्याल में बस यही पूछा है, इन उन 33,000 हजार नहीं 33 ऑर्डिनरी सागर, देवों की भी उत्कृष्ट आयु और नारकी की भी उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती। तो शंका इसीलिए पूछी गई, 29 प्रकृतियों वाले ये उदय स्थान का काल कितना है, ये देवों की बात चल रही है। समाधान, भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त देव के प्रथम समय से लेकर, यानी पर्याप्त भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर वहां से लेकर आयु का अंतिम समय आने तक इस उदय स्थान का काल है। इसका अर्थ है ना, देवों के थ्रू आउट इन्हीं का उदय चल रहा है, भले बंधेंगे वो तो यश अयश शुभ दुर्भ जो कुछ बंधेंगे मिथ्या दृष्टि दे, उदय थ्रू आउट इनका यही चल रहा है। तो अंतर्मूर्त से कम हीन 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त कम 33 सागरोपम प्रमाण है। देवों के पांचों उदय स्थानों के समस्त भंगों का योग 5 हुआ। अब हमने हर एक गति के अलग अलग देखे टोटल भंग, अब इस चारों गतियों के यहाँ टोटल करें। चारों गतियों के उदय स्थानों के भंगों का योग 7,670 होता है। देखो यह फिर उसको टेबल बन करके बताया उन्होंने, नरक में 5 उदय स्थान है, भंग भी 5 है। देवों में भी हमने 5-5 देखे थे, है ना, मनुष्य तिरियंचों में ज्यादा थे। तिरियंचों के उदय स्थान 9 जुदे जुदे हैं। जुदे जुदे 9 उदय स्थान बताएंगे, 21, 23 किसको होगा, बंद स्थान है वो। कुछ रह गया, 24 स्थावर एक इंद्रियों के भूल गए, 21, 24। देखो हम पूछते हैं आपको, विग्रह गति में सबको 21 वाला है, त्रस हो या स्थावर हो। मिश्र शरीर काल में स्थावरों को 24 है और त्रसों को 26 है। अभी उसके भंग नहीं गिन रहे, अब जो 24 वाला है कौन, एक इंद्रिय, वो शरीर पर्याप्ति होने पर क्या होगा, 25 होगा, परघाती बढ़ेगा ना। हाँ, यदि आतप उद्योत वाला होगा तो ही उसको 24 से वो 26 हो जाएगा। यानी वो हमने 21 का भी लिया, 24, 25, 26 भी लेना है। 26 वाले अन्य मिश्र में होगा। हाँ, उद्योत वालों को, यानी वो तो एक इंद्रिय वाला क्या हुआ, फिर से एक इंद्रिय के केवल देखो, 21 वाला वो 24 हुआ, 24 का 25 हुआ और 25 का 26, उसके चार ही काले। एक इंद्रियों में उद्योत वाला वो भी 24 था, 24 के बाद वो 26 हुआ और 26 का 27 हुआ। ये एक इंद्रिय के बाद विकलेंद्रियों में 21 वाला था, 25 कैसे होगा, 26 होगा, सहनन है ना उसके, सहनन के बाद वो विहाय गति में 28 में चला जाएगा, 28 का 29 और 30 होगा। उद्योत वाला होगा तो 26 के बाद 29 होगा डायरेक्ट और 30 31 होगा। इस तरह ये सब उन 9 स्थान गिनाने हैं। 21 वाला भी होगा, 24 वाला भी होगा, 25 वाला भी होगा, 26 वाला, 27, 28, 29, 30, 31, ये 9 स्थान हो गए। और भंग उनके ये जुदे जुदे बताए, एक इंद्रियों के 32 होते हैं, क्योंकि उद्योत सहित आतप या उद्योत सहित रहित वाले वो 32 भंग अलग अलग हो गए। विकलेंद्रिय के 54 होते, हमने देखे थे 18 भंग एक एक के लिए थे, द्विंद्रिय के 18, तीनद्रिय के 18, चतुरिंद्रिय के 18, याद है क्या, निकाल निकाल, मैं आप खाली बोलती जाऊं और आप सुनते जाओ। देखो एक इंद्रियों की बात हमने यहाँ देखी थी, वो टेबल बनाया था उन्होंने, पेज नंबर 39 निकालो। देखो ये एक इंद्रिय के है, ये टेबल ही केवल देखेंगे। एक इंद्रियों में 21 वाला स्थान उद्योत रहित वालों का, पेज नंबर 39, 5 भंग बताए थे, 24 में 9 भंग हो गए थे क्योंकि उसमें पर्याप्त अपर्याप्तों को मिलकर लिए थे। 25 में 5 भंग हो जाते हैं, यह 25 में अपर्याप्तों को नहीं होता है, और फिर 26 में भी 5 भंग हो जाएंगे। उसके बाद उद्योत सहित वालों में लिए, उद्योत सहित वाले तो पर्याप्त ही होते हैं, 21 वाले वो पुनरुक्त होते हैं, 24 वाले भी पुनरुक्त भंग हो गए, 26 वालों में चार भंग हो जाएंगे और 27 वाले में भी चार भंग हो जाते हैं। ये चार भंग कैसे आए? हाँ, यश और अयश और ऐसा नहीं, आत उद्योग से रहित है, उसमें पांच पांच भंग बताने था ना। नीचे चार चार ठीक है, आतप उद्योग सहित, आतप के दो और उसके दो। हाँ, देखो यश के साथ और अयश के साथ लगाना। हाँ, तो दुर्भग आना दे के और सुभग, इसलिए दो। क्यों नहीं होता है? देखो निकालो, पेज नंबर 36 निकालो। नहीं, उसके दुर्भग और अनादि लिया एक केंद्रियों में, और यश अयश के दो भंग लिए, और वो बादर और सूक्ष्म के यश अयश लिए, वो बाद में बिना के। बिना के कैसे लिए पांच भंग? यश कीर्ति के साथ दो दो लिए, अयश के साथ दो लिए, ये बादर सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म। हाँ, नहीं नहीं, अयश के साथ दो लिए, यश के साथ एक ही है। सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त में अयश ही आता है, अयश का एक भंग और यश के दो दो भंग। से फिर देखो 25 वाला स्थान है ना, वो ऊपर से ले लो। आतप और उद्योत रहित वालों की बात चल रही है, पांच भंग कैसे निकाले उन्होंने? देखो यश अयश दो है ना, तो उसी को फिक्स रखो। अपर्याप्तों में तो होते नहीं है, तो यश में पर्याप्त पर्याप्त का ही भंग होगा यश में, पर अयश में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को अयश हो सकता है, यानी अयश यश अयश का डिफरेंस हो गया उसमें, और बादर और सूक्ष्म का भी भंग हो गया। सूक्ष्म तो उसमें चला जाएगा अयश में, बादर के लिए यश अयश दोनों हो जाएगी। ये पांच नौ इस तरह से लिए, और नीचे जो लिए हैं वो तो पर्याप्त उनके ही होते हैं। हाँ, ऐसे दो इस तरह 32 भंग वहां से लिए थे एक इंद्रियों के। उसके बाद आना पेज नंबर 43 पर, उद्योत सहित और रहित वालों के उन्होंने सब भंग, ये टोटल हमने बहुत बार देखे थे, तो वहां 18 भंग हुए थे, क्योंकि वहां तो कोई सूक्ष्म का सवाल नहीं है, सारे बादर ही होते हैं। हाँ, पर्याप्त पर्याप्तों के दो दो भंग हो गए, उसमें भी यश अयश की बात करनी है, उनके भी दुर्भग अनादेय का ही उदय होता है। उसके बाद पंचेंद्रियों के भंग हमने देखे थे, पंचेंद्रियों के टोटल भंग। हाँ देखो, प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार वगैरह करके वो सब उद्योत से रहित सहित वाले की बात यहाँ पेज नंबर 52 पर देखी थी। हाँ, तो 4906 हुए थे, यही टोटल यहाँ बताइए। पेज नंबर 59 पर चारों गति के मिलकर भंग बता रहे थे। देखो देव नरक गति के पांच उदय स्थान है, पांच भंग है, तिरियंचों में 9 उदय स्थान अभी हमने गिनाए थे। सावरों के अलग हो गए, त्रसों के, सब मिलकर तिरंज गति में इंक्लूड किए, उसमें एक इंद्रियों के 32 भंग, विकल इंद्रिय के 54, क्योंकि द्विंद्रिय के 18, तीनद्रिय के 18 और चतुरिंद्रिय के 18, और पंचेंद्रियों के 4906 भंग, टोटल 4992 भंग हो जाता है तिरंज गति में अकेले। मनुष्यों के उदय स्थान 11 है, यानी सामान्य मनुष्यों के हरेक के अपने अपने पांच हो गए, केवल आहारक के नौ हो गए, ये चार हो गए। सामान्य मनुष्यों के पांच उदय काल, विग्रह गति वगैरह वगैरह, आहारक के चार ही उदय काल, उनको विग्रह गति नहीं होती। और केवली के उनके भी अयोगी के अलग ही ने। उनके भी पांच पांच हो गए ना अपने, हाँ। उनको विग्रह गति नहीं, परंतु कारमान तो है ना उसके लिए, हाँ। और अयोगी की दो अलग गिने, इसलिए 11 है उदय स्थान और 26 और 68 भंग हो जाते हैं। देवों में पांच उदय कान स्थान है और उनके भंग भी पांच है। इस प्रकार चूंकि एक एक गति के साथ अनेक कर्म प्रकृतियों का उदय पाया जाता है, यानी अलग अलग गतियों में अनेक अलग अलग कर्मों का उदय पाया जाता है, ये बात उनको सिद्ध करनी थी। अतएव अभी यहाँ से शंका है ये इतने बड़ी क्यों बातें बताई? तो हमने चार सूत्र देखे थे कि नर गति के उदय से जीव नारके होता है, तिरंज गति के उदय से जीव तिरंज होता है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि इतने अलग अलग कर्मों का उदय अलग अलग गति में होता है, उसके इतने भंग भी पाए जाते हैं, अतएव केवल नरक गति के उदय से ही नारकी होता है, तिर्यंच गति के उदय से ही तिर्यंच होता है, मनुष्य गति के उदय से ही मनुष्य होता है और देव गति के उदय से ही देव होता है, यह कथन घटित नहीं होता, ये प्रश्न है। प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ था निकालो जरा, पेज नंबर 32 निकालो। देखो हमने पहले सूत्र पढ़े कि नारकी जीव किस कारण से होता है, तो नरक गति के उदय से होता है, तिरंज के क्यों होता है, तिरंज गति के, चारों गतियों की बात बता दी। अब 32 पेज पर यहाँ 11 नंबर के सूत्र के नीचे देखो, सेकंड पैराग्राफ है ना, वहाँ का पांच लाइन का पैराग्राफ है ना नीचे वाला, वो बंद। नरक, तिरंज, मनुष्य और देव, ये गतियां यदि केवल अपनी एक एक प्रकृति उदय में आती हो तो नरक गति के उदय से, हमने उदय से शब्द डाला था, नारकी, तिरंज गति के उदय से तिरंज, मनुष्य गति के उदय से मनुष्य और देव गति के उदय से देव होता है, ऐसा कहना उचित है। किंतु अन्य प्रकृतियां भी वहां उदय में आती है जिनके बिना नरक, तिरंज, मनुष्य और देवगति नाम कर्मों का उदय पाया नहीं जाता, वह इस प्रकार है। अभी वह इस प्रकार है करके ये सारे ही 32 से लेकर 60 पेज तक उनके उदय स्थान बताए जीते जीते, यानी अकेले नरक गति का उदय नहीं, अकेले तिरंज गति का नहीं, तो क्या क्या उदय होता है किसी जीव को, उसकी बात बताए। अब उनकी शंका यहाँ पूरी होती है, तो कहते इसलिए ये जो बताया था कि नरक गति के उदय से नारके होता है, तिरंज गति के उदय से तिरंज होता है, मनुष्य गति के उदय से ही मनुष्य होता है, देव गति के उदय से ही लगाया देव होता है, यह कथन घटित नहीं होता, ये यहाँ तक प्रश्न है। प्रश्न वहां से शुरू हुआ था और इसलिए सारे उदय स्थान भी बताए। अब उसका समाधान यहाँ पर आता है, यह उपन्यास विषम है, यानी जो कंपैरिजन कर रही है, जो कथन कर रहे हैं कि अन्य भी कर्मों का उदय है, इसलिए आप ही लगा के क्यों की बात कर रहे हैं, तो कहते वो विषम है, क्योंकि नारक आदि चार पर्यायों के प्राप्त होने में जिस प्रकार नरक गति आदि चार प्रकृतियों के उदय का क्रमशः अविनाभावी संबंध है, इसका अर्थ क्या है, नरक पर्याय प्राप्त होने में नरक गति का उदय का अविनाभावी संबंध है, तिर्यंच गति प्राप्त करने, तिर्यंच पर्याय प्राप्त करने के लिए तिर्यंच गति का उदय का अविनाभावी संबंध है, मनुष्य गति प्राप्त होने में मनुष्य गति नाम कर्म का अविनाभावी, उसके उदय का अविनाभाव संबंध है, इसे देव में, वैसा शेष कर्मों के उदयों का वहां अविनाभावी संबंध नहीं पाया जाता है। हाँ, नरक गति है तो पंचेंद्रिय जाति वगैरह वगैरह वहां उदय होगा उसका, परंतु वह अविनाभावी नहीं, पंचेंद्रिय जाति का उदय तो अन्य तीन गतियों में भी है, केवल उसी स्पेसिफिक उसमें नहीं होगा। तो कहते उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर पर्याय के अंतिम समय तक जिस प्रकृति का नियम से उदय होकर विवक्षित गति के सिवाय अन्यत्र उदय न होने का नियम देखा जाता है। यानी अभी नर गति की बात करते हैं, नारकी के वो पहले समय से, कहां विग्रह गति के पहले समय से लेकर नर गति का उदय है, कहां तक? अंतिम समय तक। और अन्य किसी भी गति में नर गति का उदय नहीं है। पंचेंद्री जाति लेते तो हाँ यहाँ पर भी है, अन्य भी में है, तो ये अविनाभाव कैसे ले? उसका उदय तो जन्म पहले समय से अंतिम समय तक पाया जाता है और अन्य किसी गति में नहीं पाया जाता। ये दोनों ओर से जो कन्फर्म ऐसी प्रकृति एक ही कह सकते हम, वो नरक गति या तिर्यंच गति। फिर से पढ़ते, उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर पर्याय के अंतिम समय तक जिस प्रकृति का नियम से उदय होकर, एक बात यानी उसका तो नियम से थ्रू आउट उदय है, दूसरी बात क्या है? विवक्षित गति के सिवाय अन्यत्र उदय न होने का नियम देखा जाता है। उसी कर्म प्रकृति के उदय से नारकी तिर्यंच मनुष्य और देव होता है ऐसा निर्देश किया गया है, अन्यथा अनवस्था उत्पन्न हो जाएगी, केओस हो जाएगा कहते हैं। कोई भी गति के उदय से कहीं पर भी चला जाएगा। तो यहां जाके उनकी शंका का समाधान हो गया। तो शंका ख्याल में आवे इसलिए सारे उदय स्थानों को हमको बता गए। पहले भी लिख देते तो आपको उदय स्थानों की कैसी बातें पता चलती हैं। अभी कितनी क्लैरिटी होती है अभी, क्योंकि जिसको जो उदय है थ्रू आउट वही चलता है। हमने ये बात भी नक्की की ना, भले बंद अलग अलग हो सकता है पर उदय तो वही रहता है। नारकी उनके थ्रू आउट तो प्रशस्त है। हाँ हाँ, कैसे कैसे उदय, यानी क्लैरिटी बढ़ जाती है अपनी। अभी तो केवल इतना ही बताया है कर्मकांड में, तो कौन से उदय स्थान में कौन कौन से बंद होते हैं, जैसे नारकी का 20 वाला 21 वाला जो उदय स्थान है वहां कौन से बंद हो सकते हैं, 21 के बाद वहां 25 का बंद उदय चालू हो, वो तो और अलग। ये अलग उदय कालों में, उदय काल किसका है, विग्रह गति वाला मिश्र काल है, शरीर पर्याप्ति है, वहां कौन से पर्याय बांध सकते हैं, प्रकृति बन सकती है, जैसे तिर्यंचों में कहेंगे हम या मनुष्यों में अपर्याप्त कालों में नर गति वहां नहीं बंधेगी, पंचेंद्री बाद में जाके बंधेगी। हाँ, देवगति बन सकती है समय दृष्टि को, ये तो ये आगे। हाँ यानी उसमें तो एक में दूसरा कॉम्बिनेशन, कर्मकांड दूसरे भाग का विषय यही है। वहां उदय स्थान बताएंगे, वहां सत्व कौन कौन से का है और बंध कैसा है वो बताना है, बंध स्थान बताएंगे उस पर्टिकुलर बंध स्थान में कौन से उदय हो सकते हैं, कितना सत्व हो सकता है, सारा आपस में कॉम्बिनेशन। फिर दो दो को फिक्स रखेंगे, ये बंध है और ये उदय है, तो वहां सत्व कितने का हो सकता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसमें से, अभी भूल गए सब। यानी इससे क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है, चारों गतियों का स्वरूप, उनके जीवों के परिणामों की बातें, कौन से गुणस्थानों में कैसे क्या बातें होती है, वो सब पता चलता है। अब आगे बढ़ते 12 नंबर का सूत्र, सिद्धि गदिये सिद्धो नाम कदम भवदी। सिद्धि गति में जीव सिद्ध किस कारण से होता है, तो ऐसा कौन सा, अभी हमने इतने सारे कर्म देखे मनीषा बेन, कौन से कर्म के कारण सिद्ध होता है, तीर्थंकर प्रकृति। और जिसको तीर्थंकर प्रकृति नहीं वो सिद्ध नहीं होगा, क्या कहा? जैसे नरक गति के कारण नरक में गया, कौन से कर्म के कारण सिद्ध में जाता है जीव, जरा जरा विचार करे तो उनको, कौन से प्रशस्त कर्मों के कारण जाता है, कौन सा कर्म लेकर जाता है वहां उदय के लिए? अरे तो वो बताओ ना, सब कर्मों का अभाव करके जाता है। हाँ, क्षय करके जाएगा ना। देखो तो पहले तो यह प्रश्न पूछा गया है, यहां भी पहले के समान नय और निक्षेपों का आश्रय लेकर चालना करना चाहिए, चालना ये चालनी करते हैं ना, अथवा उदय आदि पांच भावों के आश्रय से चालना करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? पहले के समान भूले क्या हमने, नए निक्षेप बताए थे सब, नयों में बताए ना, कौन से नए बताए थे, निक्षेप तो याद है ना, निक्षेप तो याद है आपको, नाम स्थापना द्रव्य भाव, वो निक्षेप बताए थे। और नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र सममी शब्द सममी रूढ़ एवं भूत, ये सब ये हमने कितनी चर्चा की थी, सब हो गया। 28 पेज निकालो, चालना यानी नहीं और ले नहीं, निक्षेप को आश्रय से उसकी चर्चा फिर दोबारा करनी चाहिए पूरी, यानी वहां तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग सिद्ध कैसे कह सकते हैं। वहां जैसे नारकी कहना है तो नारकी कौन कौन से नयों से कहा था वो आपको बताया था, वो पाप कर रहा है तो भी नारकी कहा कि कर्म देखकर भी नारकी नारकी पर घटाया था, ऐसे ही नए लगाकर सिद्धों पर भी घटाना चाहिए। अब जैसे एवं भूत नये से तो जिस समय वो सिद्ध पर्याय से परिणत है तब उसको सिद्ध कहेंगे। पर्याय ने अभी उस रूप वो शुद्ध उपयोग में है तभी कहेंगे उसको, हाँ वो एवं भूत में चला जाएगा। हाँ अभी ऐसे वो निक्षेप भी बाद में लगाए थे हमने, बताओ सिद्धों में क्या क्या देखो क्यों नहीं लगेगे, अरे ये हमारे शुद्ध ज्ञान के भेद है, सिद्धों के नहीं। सिद्ध हमारे ज्ञान का विषय है कि नहीं है, तो उसमें क्यों नहीं नए लगेंगे, केवल ज्ञान में नए, केवल ज्ञान नयों से नहीं जानता है, हम शुद्ध ज्ञानी तो नयों से ही जानते हैं। यहाँ क्या लिखा था, वो पापी मनुष्य को भी नारकी कह दिया था, इस तरह से जो शुद्धोपयोग वाला है या जो कोई अन्य जो चीज है उसको सिद्ध कह सकते कि नहीं सकते, वैसे नहीं लगाना। निक्षेप में सिद्ध नाम रखना है, नाम निक्षेप हुआ, वो सिद्ध की मूर्ति बनाते हैं तो हम ये स्थापना निक्षेप हुआ, वो लगाना निक्षेप में। यहाँ जो इस अपेक्षा से लगाए ना, देखो यहाँ रुजु सूत्र में नारकी कैसे बताया था, शिकार की जगह पर पापी मृगों पर आघात करता है तब वो नारकी है। अब ये सिद्ध बनने के लिए जो कुछ कार्य कर रहा है शुद्ध उपयोग में तब हम मीराज को सिद्ध कहेंगे, ऐसा नहीं लगा सकते वहां पर। यहाँ के वो तो नारक गति में है क्या वो जीव, 28-29 पेज पर कैसा लगाया है वैसा लगा लो, पापी मनुष्य को नारकी कहा था वहां पर, वो शुद्धोपयोग वाला को कहेंगे उस नए से, हाँ ऐसे अलग अलग उसमें कहेंगे हम उसको। हाँ अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, पांच भावों में भी बताएंगे ना, वैसे हम पूछा था नारकी को, नारकियों में तो औदयिक भाव की बात बताई थी, वहां पूछा था ना कौन से भाव से वो होता है, क्षायिक भाव से होता है कि औपशमिक भाव से होता है कि औदयिक भाव से, वैसे यहाँ पर पूछना सिद्ध जो है क्षायिक भाव है, अब उसी का उत्तर देते, खैयाए लब्धिये, क्षायिक लब्धि के कारण जीव सिद्ध होता है, क्षायिक लब्धि यानी उनकी प्राप्ति हो गई ना, वो क्षायिक भाव प्राप्त हो गया, कर्मों के निर्मूल क्षय से उत्पन्न हुए। हमने आपको पूछा था कौन से कर्म के कारण होते हैं, कर्म के कारण नहीं होते, कर्म के क्षय के कारण होते, निर्मूल क्षय, आठों कर्मों का पूरा क्षय, उत्पन्न हुए परिणाम को, कर्मों के निर्मूल क्षय से उत्पन्न हुए परिणाम को क्षय कहते हैं, और उसी की लब्धि से अर्थात क्षायिक लब्धि के कारण जीव सिद्ध होता है, उसको लब्धि पर लब्धि क्योंकि जीव में वो हुआ है ना, प्राप्ति हुई उसको, यानी वो कर्मों के क्षय से सिद्ध नहीं हुआ है, कर्मों के क्षय के कारण यहाँ जीव में जो परिणाम हुआ है वो जीव का परिणाम है, वो बता रहे ना, वो कर्म का क्षय किसको बता रहे, जीव के परिणाम को बता रहे, कर्मों में तो क्षय हुआ, जीव में क्या हुआ, क्षायिक भाव हुआ, क्षायिक भाव जीव का अपना है, कर्म का नहीं है, कर्म तो उसका कथन नहीं, कर्मों की ओर कथन कर रहे हैं, कर्म की तरफ से हम कथन कर रहे हैं। कर्मों की कौन सी अवस्था हो गई वहाँ? क्षय हुआ, तो क्षय तो कर्मों में हुआ, जीव में क्या हुआ? जीव में क्षायिक भाव प्रकट हुआ, वो उसकी क्षायिक लब्धि है। यही कह रहे, क्षायिक लब्धि के कारण जीव सिद्ध होता है। वो शंका नीचे, सिद्धि गति में सत्व प्रमेयत्व आदि अन्य परिणाम भी होते हैं, अने जो क्षायिक भाव प्रकट हुआ है उसी को क्यों सिद्ध कहते हैं? वहां अन्य भी तो भाव है कि नहीं उसके, जैसे अस्तित्व है, प्रमेयत्व है, ये तो है ही वहां पर भाव, उनसे सिद्ध होता ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? जैसे वहां पूछा था कि अकेले नरक गति का नाम क्यों लेते हो, बाकी भी कर्मों के उदय है ना, ऐसे यहाँ पूछ रहे, अकेले क्षायिक भाव की क्यों बात कर रहे हो, अस्तित्व वस्तुत्व बाकी भी भाव है कि नहीं है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि यदि वे सत्व प्रमेयत्व आदि परिणाम सिद्धत्व के कारण होवे तो सभी जीव सिद्ध हो जाएंगे। वो परिणाम अगर सत्ता वाला परिणाम है, प्रमेयत्व वाला परिणाम है, वो अगर सिद्ध का कारण होता है तो सभी में वो पाया जाता है, वो सभी जीव सिद्ध बनेंगे, बनेंगे ने सभी सिद्ध है ऐसा नक्की होगा, क्योंकि उनका अस्तित्व, उनका ने सत्व प्रमेयत्व आदि गुणों का अस्तित्व सभी जीवों में पाया जाता है, इसलिए क्षायिक लब्धि से सिद्ध होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब ये गति मार्गणा पर चार गति और सिद्धि गति इस तरह से उन्होंने घटित करके बताया। अब आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का सूत्र, इंद्रियानुवादेन एइंद्रियो बीइंद्रियो तीइंद्रियो चौरिंद्रियो पंचिंद्रियो नाम कदम भवदि। जैसे ये मार्गणा की बात यहाँ शुरू की थी ना उन्होंने, गति मार्गणा वगैरह, देखो ये बात अपने विषय क्या है, बंधकों की, बंधकों की अपनी बात चल रही है क्या, भूल गए? हाँ, तो वहां या पहले क्या बता चुके थे, देखो देखो 6 नंबर पर सूत्र था, मार्गणा बताई थी, सारे मार्गणाओं का कथन वहां आया था। पहले सूत्र में बताया था कि जो बंधक है उनका ये निर्देश है, फिर कौन कौन बंधक है वो बात उन्होंने पूछी थी, तो उसके लिए दूसरे सूत्र में उनको 6 नंबर के पृष्ठ पर नंबर पेज नंबर 6, 14 मार्गणाओं के नाम बताए, इतने 14 मार्गणा स्थान है। पीछे उन्होंने एक एक मार्गणा लेकर बताया था कि गति अनुवाद से निरक गति के नारकी बंधक है, तीर्यंच बंधक है, देव बंधक है, मनुष्य बंधक भी है, अबंधक भी है। अबंधक क्यों कहा था? 14वें गुणस्थान के लिए, और सिद्ध अबंधक है, ये बात वहां सिद्ध हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक इंद्रियों की बात बता रही कि इंद्रिय के अनुवाद से एक इंद्रिय जीव बंधक है, द्विइंद्रिय बंधक है, तीनिंद्रिय बंधक है, चतुरिंद्रिय बंधक है। पंचेंद्रिय के लिए क्या कहा था? बंधक भी है और अबंधक भी है। इस तरह से उन्होंने हर मार्गणा में बताने की बात की थी, यानी 14 मार्गणा की बात की कि आहारक अनाहारक में भी वो सब बंधक अबंधक सब चर्चा की। उसके बाद अभी अनुयोग द्वार कौन सा है? स्वामित्व अनुयोग द्वार, पेज नंबर 25 से स्वामित्व की बात चल रही है। खुद्दा बंध ने क्षुद्र बंध, जो महाबंध के अगेंस्ट क्षुद्र बंध, यह इन शॉर्ट सब बता रहे और विस्तार से बताएंगे महाबंध में, ये खुद्दा बंध और वो महाबंध, ऊपर लिखा है ना पुस्तक पर क्षुद्रक बंध, ये सवाल परसों किसने किया था? परसों भी किसी ने प्रश्न पूछा था, क्षुद्रक का ही अर्थ खुद्दा, हाँ क्षुल्लक में एक क्षुद्र जैसे छोटा, छोटा हम वो क्षुद्रक भव कैसे कहते हैं, क्षुद्र भव वैसा ये। हाँ महामंद में तो बहुत हम पढ़ चुके हैं ना कितना विस्तार था। देखो उसके बाद स्वामित्व की बात चली, क्योंकि विषय कहाँ से कहाँ आए हैं हम उसकी बात है। तो कहते हैं उसमें 11 अनुयोग द्वार बताएंगे, वो भी भूले के याद है। एक केंद्रीय एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व काल और अंतर, नाना जीवों के भंग विचय, फिर उसका नहीं उसमें स्वामित्व कहाँ होगा, संख्या होगी, द्रव्य प्रमाणन संख्या, क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर, फिर उसका भागा भाग भाव नहीं आता, भागा भाग आता है और अल्पबोध, ये अनुयोग द्वार बताए। अभी एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व की बात चल रही थी उनकी। तो ये 28 पेज से शुरू हुई थी, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व और स्वामी बंधक की बात चल रही थी ना। तो भी उस वहां पूछा था कि नर गति मार्गणा के अनुसार नर गति में नारकी जीव किस कारण से होते हैं, तो वहां बताया गया था वो उसके नरक गति नाम कर्म के उदय से। और फिर वो प्रश्न पूछा गया था ये अलग अलग उदय भी होते हैं इसको ये क्यों कहा, ये अपना विषय यहाँ तक आया है। अब ये सब गति के बारे में पूछना उनका हो गया, अभी इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं। ये पेज नंबर है 61, 14 नंबर का सूत्र, इंद्रियानुवादेन ए इंद्रियो बी इंद्रियो ती इंद्रियो चौर इंद्रियो पंच इंद्रियो नाम कदम भवदी। वहां गति मार्गणा में क्या पूछा था, नारकी क्यों होते हैं, तो नरक गति के उदय से। अब एक इंद्रिय मार्गणा से एक इंद्रिय इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव क्यों होते हैं, तो कहेंगे उस जाति नाम कर्म के उदय से, है ना। पढ़ने के पहले हम इतना तो अंदाजा बांध सकते हैं। देखो अभी वो अलग उसका उत्तर अलग पद्धति से देंगे, वो जीव का क्षोभ कितना है उसके बाद बताएंगे। देखो पहले हम प्रश्न पढ़ते हिंदी में, इंद्रिय मार्गणानुसार एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय वो पंचेंद्रिय जीव कैसे होता है। यहाँ पर नामादि निक्षेपो नैगमादि नयो और औदयिकादि भावों का आश्रय करके पहले के समान इंद्रिय की चालना करना चाहिए। अभी जैसे हमने वहां नरक में भी लगाए थे वैसे सब में लगा लेना एक एक को। अब उसका उत्तर, खोव समियाए लब्धिये, वो सिद्धों को हमने क्षायिक लब्धि से सिद्ध होता है कहा था, और यहाँ कहते क्षायोपशमिक लब्धि से। जीव एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय होता है, वो सिद्ध शब्द नहीं चाहिए वहां पर। नीचे पढ़ेंगे, इंद्र के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, इंद्र जीव है, जीव को इंद्र कहा, उसका जो चिन्ह अर्थात ज्ञापक या सूचक है वह इंद्रिय है, यानी जीव का सूचक वो इंद्रिय कहा। अब शंकाकार पूछते हैं एक इंद्रिय पना क्षाउपशमिक किस कारण से होता है, पूछा बड़े क्षाउपशमिक लब्धि से एक इंद्रिय पना हुआ, तो कहते एक इंद्रिय कि मैं इंद्रियतम कौ समयम, एक इंद्रिय पना क्षाउपशमिक कैसे हो सकता है, उसको क्षाउपशमिक क्यों कहा, तो क्षाउपशमिक का अर्थ पहले समझना चाहिए, उसको बताएंगे पहले। समाधान कहते हैं स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान है उसको स्पर्श इंद्रिय ज्ञान कहेंगे, और उस पर आवरण वाला कर्म उसको कहेंगे स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म, यानी उनके स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है कि नहीं है, केंद्रियों के है, रसना इंद्रिय संबंधी है क्या, नहीं नहीं है ना रसना इंद्रिय संबंधी, ने घ्राण संबंधी, ना चक्षु संबंधी, ना श्रोत्र संबंधी, तो बाकी कैसे है, यानी स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान थोड़ा खुला है, और बाकी इंद्रिय संबंधी ज्ञान बिल्कुल खुला नहीं है, पूरा मिट गया है। अब यही बात कहेंगे तो के स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के सत्वोपशम से। अब ये बहुत सारी नई नई यहाँ शब्द आने वाले हैं। ये जो ज्ञानावरण कर्म है वो घाती कर्म है कि आघाती कर्म है, पहले ये नक्की करो। ज्ञानावरण कर्म घाती कर्म का भेद है कि आघाती का? घाती कर्म का। तो घाती कर्म है, अभी घाती कर्म जो उसकी जो प्रकृतियां है उसमें दो दो भेद होते हैं। उसमें देशघाती प्रकृतियां होती है और सर्वघाती प्रकृतियां होती है। अब बाकी की हम बात छोड़ देते हैं, ज्ञानावरण की बात उठाते हैं। ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियां हैं, तो उसमें केवल ज्ञानावरण ये सर्वघाती प्रकृति है। उसका अनुभव कैसा भी मंद क्यों न हो, वो तो पूरा घात ही करता है अपना प्रतिपक्ष का, केवल ज्ञान नहीं होने देता। और बाकी चार जो है वो देशघाती प्रकृतियां हैं, प्रकृतियां देशघाती हैं। पर प्रकृति देश, देखो सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक, स्पर्धक यानी अनुभाग बताने वाले।
अरे
स्पर्धक का अर्थ होता है यहाँ, देखो यहाँ हम पढ़ रहे थे इस शब्द में किस कारण से होते हैं, तो उसके लिए हम सर्वघाती देशघाती की बात बता रहे थे आपको। ज्ञानावरण कर्म है, उसमें मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरि ज्ञानावरण, ये देशघाती प्रकृतियां हैं। जो जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं और देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं। स्पर्धक किसको कहना, अनुभाग की रचना को बताने वाले। परमाणु को वर्ग कहेंगे, समान 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 अविभाग वाले परमाणु को इकट्ठा कहेंगे तो उसको वर्गणा कहेंगे। एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई सारी अनेक वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहेंगे। इसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। तो यह कहते हैं कि केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है। जो जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती भी होते, ऐसा ही बंद हुआ था, ऐसा ही सत्ता में पड़े थे। अभी हमारा मति ज्ञान खुला है तो उसका अर्थ क्या है, मति ज्ञानावरण का देशघाती का उदय चल रहा है। यहां तक समझ में? मति ज्ञानावरण में जो बंधी थी तब उसमें सर्वघाती देशघाती दोनों प्रकार के परमाणु बंधे थे, परंतु हमारा मति ज्ञान का अगर सर्वघाती का उदय हो जावे तो मति ज्ञान पूरा मिट जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो हमारा मति ज्ञान तो, मति शुद्ध ज्ञान तो चालू ही है। उसका अर्थ क्या है, उसके देशघाती का उदय है, सर्वघाती का उदय नहीं है। अब यहां पर और स्पेसिफिकली बता रहे, एक इंद्रिय जीव के मति ज्ञान के में तो स्पर्शन संबंधी, रसना संबंधी वगैरह सब अलग अलग पांचों इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, मन संबंधी भी होता है। अब एक इंद्रियों के बात करेंगे तो उनके स्पर्शन संबंधी ज्ञान तो खुला है, यानी स्पर्शन इंद्रिया का तो देशघाती का उदय है, और रसनेन्द्रिय रसनावरण जो है, घ्राण इंद्रियावरण है, चक्षु इंद्रियावरण है, श्रोत्र इंद्रियावरण है, और नौ इंद्रियावरण यानी मन संबंधी है, वो आवरणों का कैसा उदय है, सर्वघाती का उदय है। यहाँ तो इतना ही, कौन सा एक इंद्रिय संबंधी वो किया, अभी उसके अंदर और बहुत विस्तार से नहीं गए। यानी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उघाड़ है, बाकी इंद्रिय संबंधी उघाड़ नहीं है, तो उसका सर्वघाती का उदय है। अब यही बात यहाँ पढ़ेंगे। अभी हम देखो नीचे का जो समाधान है ना, कहते हैं स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के, ये मति ज्ञानावरण का भेद बताया, मात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है उनके, तो स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के सत्व उपशम से, यानी सत्ता में पड़ा है, उदय में नहीं आ रहा, ये सत्व उपशम यानी वो भविष्य में यानी दूसरे तीसरे आदि निषेकों में पड़े हैं। सत्ता में है, उदय में नहीं आ रहे,
पड़े
क्योंकि बनते भी है, सत्ता में पड़े भी रहते हैं, उदय के समय में वो देशघाती होकर उदय में आएगी। उसी के देशघाती स्पर्धकों के उदय से। देशघाती है तो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है, यानी स्पर्शनेन्द्रियावरण में क्या हो रहा है, सर्वघाती सत्ता में पड़ा है, उदय में नहीं आ रहा, उदय में देशघाती रूप से आ रहा है। एक बात और क्या है, चक्षु श्रोत्र घ्राण और रसना यानी जिह्वा इंद्रियावरण कर्मों के देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, उन्हीं कर्मों के सत्वोपशम से, यानी उनके देशघाती सत्ता में है, उदय में नहीं आ रहे, तथा सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से। यहां क्या लिखा, देखो स्पर्शन इंद्रिया में उल्टा लगाना, सर्वघाती का सर्वोपशम है और देशघाती का उदय है, और रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र संबंधी जो आवरण है वो देशघाती का सत्वोपशम है, उदय में भी नहीं आ रहा है, उदय भी क्षय है, और सर्वघाती का उदय है। समझ में है ना बात, जो जीव परिणाम उत्पन्न होता है, ये जीव का जो परिणाम है उसे क्षयोपशम कहते हैं, ये ज्ञानावरण पर लगा रहे, क्योंकि वह भाव पूर्वोक्त स्पर्धकों के क्षय और उपशम से उत्पन्न होता है। पूर्वोक्त ने देशघाती सर्वघाती का जो बात बताई उन्होंने उसकी बात होती, उस जीव परिणाम की एकेंद्रिय संज्ञा है, यानी मात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आवरण का उघाड़ है, यानी आवरण का क्षोपशम है कहेंगे हम, और बाकी अन्य इंद्रियों संबंधी सर्वघाती का उदय है। हा? क्या लिखा है, क्या लिखा है उसमें, यहां लिखा, अच्छा 61 पेज पर हमने ये लिखा था, उस जीव परिणाम की, उस जीव ऐसा शब्द डाला था, उस जीव, हाँ क्योंकि यह गैप है ना, उस जीव परिणाम की, जीव परिणाम एक शब्द है उसमें डैश लगाया, क्योंकि ऊपर भी बताया था ना उस जीव परिणाम की, जो जीव परिणाम उत्पन्न होता है, उत्पन्न, देखो देखो लास्ट लाइन क्या है, पूर्वोक्त स्पर्धकों के क्षय और उपशम से उत्पन्न होता है, ये फुल स्टॉप हुआ, आगे डालना उस जीव परिणाम, नहीं 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 कहाँ पढ़ रहे, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन के बाद जो गैप है ना वहां लिखा उस जीव डैश परिणाम, क्योंकि परिणाम आगे के पेज पर है, या आगे के पेज पर उस जीव परिणाम एक डालो तो भी चलेगा, हाँ उदय क्षय बताया ना, वो कैसा क्षय बताए हैं, उदय क्षय, हाँ उदय क्षय कैसा, देशघाती का, केवल देशघाती का, सर्वघाती का तो उदय है, हाँ उदय क्षय ने उदय नहीं होना, हाँ उदयाभावी क्षय जिसको हम कह रहे थे, देखो अभी हम आए हैं पेज नंबर 62 पर, इस एक अर्थात प्रथम इंद्रिय के द्वारा जो जानता है देखता है सेवन करता है वह जीव एकेंद्रिय होता है। शंका, सर्वघातीपना और देशघातीपना किसे कहते हैं, उसका समाधान। कर्म दो प्रकार के हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। यानी मूल आठ कर्मों में दो विभाजन किए, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म के नाम मालूम है? चार। कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मुनि और अंतराय। और अघाती कर्म वेदनीय नाम गोत्र, वेदनीय आयु नाम और गोत्र, यह आघाती है। यहाँ लिखा देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण मुनि और अंतरा, ये चार घातिया कर्म है। घाती कर्म को या घातिया कर्म को एक ही बात है। तथा वेदनीय आयु नाम और गोत्र, ये चार अघातिया कर्म है। शंकाकार पूछते हैं, ज्ञानावरण आदि की घाती संज्ञा किस कारण से है? किसको घात करते हैं वो? नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र और वीर्य रूप जो अनेक भेदों में भिन्न जीव गुण है, उनके उक्त कर्म विरोधी अर्थात घातक होते हैं। इसको जीव गुण कहा। कौन सा? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र और वीर्य, जीव के गुण बताए। और ये कर्म उसके विरोधी है यानी घातक है, इसलिए वे घाती कर्म कहलाते हैं। यानी जीव के गुणों को ये प्रकट नहीं होने देते हैं उसके पर्याय में, इसलिए उसको घाती कहते हैं। शंकाकार पूछते हैं, जीव गुणों के विरोधक तो शेष कर्म भी होते हैं, अतएव शेष कर्मों की भी घाती कर्म संज्ञा क्यों नहीं है? अन्य भी जो जीव के गुणों का घाती कर रहे हैं ना, ये सूक्ष्मत्व, अव्यबाधत्व वगैरह प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, उसका समाधान नहीं, क्योंकि शेष कर्मों को, शेष बराबर छपाए क्या, शेष कर्मों को घाती संज्ञा नहीं है। नहीं, क्योंकि ये फिर नहीं क्यों लिखा यहां पर? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या कहना है, देखो शंकाकार क्या पूछता है, शेष कर्मों की भी घाती संज्ञा क्यों नहीं है? शेष कम्माणम घादी ववदेशो किन्न होदी। समाधान नहीं, न तेसिम जीव गुण विनाशन सत्य अभावा। शेष कर्मों की घाती संज्ञा नहीं है क्योंकि उनमें जीव के, ये नहीं शब्द यहाँ एक्स्ट्रा डला है, क्योंकि समझ में है ना, उनमें जीव के गुणों का विनाश करने की शक्ति नहीं पाई जाती है। किन्न होदी न तेसिम गुण विनाशन सत्ये अभावा। निकाला आपने नहीं वाला शब्द नीचे से दूसरा समाधान में, ये दोबारा नहीं छपाए, वो नहीं चाहिए। फुल पॉइंट भी नहीं, घाती संज्ञा नहीं है क्योंकि एक शब्द फुल, हाँ फुल स्टॉप भी निकालना, नहीं के साथ उसको भी निकालो। क्योंकि उनमें जीव के गुणों का विनाश करने की शक्ति नहीं पाई जाती है। फिर शंका, किस कारण से उनमें जीव के गुणों के विनाश की शक्ति नहीं पाई जाती है? उसका उत्तर, समाधान, क्योंकि ये नहीं यहां चाहिए थे, नहीं क्योंकि ये समाधान वाला नहीं यहां है, क्योंकि हमेशा वो न के साथ चालू होते हैं। क्योंकि आयु कर्म जीवों के गुणों का विनाशक नहीं है, कारण कि उसका काम तो भव धारण कराने का है। आयु का काम क्या है? वो भव धारण कराने का। वो मनुष्य पर्याय में आया है तो मनुष्य आयु क्या करती है? मनुष्य पर्याय से उसको जुदा नहीं होने देती, मनुष्य वो उसका कायम रखती है, वो भव धारण करना उसका काम। इसको भव विपाकी भी कहते, इस कर्म को, आयु कर्म को। गोत्र भी जीव गुण विनाशक नहीं है, उसका काम नीच और उच्च कुल उत्पन्न कराना है। क्षेत्र विपाकी, क्षेत्र विपाकी तो आनुपूर्वी होता है, है? और पुद्गल विपाकी नाम कर्म भी जीव गुण विनाशक नहीं है, क्योंकि उनका संबंध यथा योग्य क्षेत्र और पुद्गलों के होने के कारण, पुद्गल ने वो शरीर संबंधी पुद्गल आदि की रचना के कारण, अन्यत्र उनका व्यापार मानने में विरोध है। व्यापार क्या है? अन्यत्र व्यापार है, जीव गुणों का वो घात नहीं करते, उनका अपना अपना कार्य जुदा जुदा है, इसलिए केवल ये घाती कर्मों को ही, वो जो हमने चार कर्म देखे उन्हीं को घाती संज्ञा है, अन्य को नहीं है। नहीं चाहिए, क्योंकि अन्य भी है ना, शरीर की रचना है, शरीर बना है वहां पर। वैसे तो भाव अपेक्षा मोक्ष कह देते वहां पर, अरिहंतों के भी भाव मोक्ष कहा है वहां पर भी, पर अभी भी शरीर बाकी है, अन्य जो कुछ कर्म बाकी है और आयु है तो भव विपाकी है, तो वो उसमें मनुष्य गति से अभी छूटने नहीं दे रहा है ना, कुछ नहीं दे रहे, हम कर्म पर आरोप करके कथन कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या कहते, शंकाकार फिर पूछता है, जीव विपाकी नाम कर्म, क्योंकि कुछ नाम कर्म भी जीव विपाकी है, जीव में उसका फल मिलता है, तो उसको घाती संज्ञा क्यों नहीं दी, ये उनका प्रश्न है। कहते जीव विपाकी नाम कर्म एवं वेदनीय कर्मों को, क्योंकि वेदनीय भी जीव के सुख दुख में निमित्त होता है, कर्म क्यों नहीं होती है, जीव विपाकी नाम कर्म एवं वेदनीय कर्मों को घाती संज्ञा कर्म क्यों नहीं होती है, समझ में आई बात ये? अब इसके लिए वो घात, अच्छा अभी समय होने आया, ठीक ठीक, अभी यहाँ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ये हमको तो जीव विपाकी क्या है, पुद्गल विपाकी क्या है, भव विपाकी क्या है, क्षेत्र विपाकी क्या है, उसको समझना है, क्योंकि ये जीव विपाकी नाम कर्म बताए है, नाम कर्म में भी कितने ही जीव विपाकी है, कुछ 27 या ऐसी कुछ प्रकृतियां नाम कर्म की जीव विपाकी है, तो उसकी चर्चा कल करेंगे हम। तो उसको घाती क्यों नहीं कहते हैं, ये उनका प्रश्न था। इसके दो लाइन पढ़कर फिर कल वो जीव विपाकी की चर्चा करेंगे विस्तार से। समाधान, नहीं, उनका काम जीव की अनात्मभूत, देखो जीव के अंगभूत गुण अलग बात है, जीव के अनात्मभूत सुभग दुर्भग आदि पर्याय उत्पन्न कराने में व्यापार करना है, इसलिए उन्हें जीव गुण विनाशक मानने में विरोध आता है। ये ज्ञान दर्शन आदि जीव के गुणों का डायरेक्ट जो विनाश ने घात हो रहा है, पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है, यह जो सुभग दुर्भग आदि जो है वो तो जीव के गुणों का नाश नहीं हो रहा है, कि उसके वो अनात्मभूत जो कुछ पर्याय, अनात्मभूत यानी वो तो शरीर संबंधी या अन्य जो कुछ है उसमें उसका व्यापार होता है, इसलिए उसको गुण विनाशक नहीं मानते। इसकी और चर्चा कल करेंगे, जीव विपाकी की बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कर्मकांड पहले भाग में से समझाऊंगी जीव विपाकी, या तो आप पढ़कर आइए या पहली पुस्तक लेके आइए, कैसे भी लेके आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको देखने के लिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देता।